तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से पतिव्रताओं के लिए पूछा था, तो मार्कंडेय जी उनको कौशिक नाम के ऋषि की कथा सुना रहे थे। तपस्या कर रहे थे, चिड़िया ने बीट कर दी, क्रोध से देखा मर गई, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया। भूख लगी तो भिक्षा के लिए गए, तो एक माई के घर पर पहुंचे। माई ने कहा अभी देती हूं। इतने में ही पति आ गए, वो उनकी सेवा में लग गई, वो भूल गई। पति को खिला पिला करके आराम करने लगी, बर्तन साफ करने लगी, तो उसके बाद सब काम कर दिया तो भिक्षा लेकर आई, तो क्रोध में आ गई कि महाराज क्रोध मत करो, मैं चिड़िया नहीं हूं। अरे इसको कैसे ज्ञान हो गया? तो कहा कि पति सेवा से मुझे सिद्धि मिली है। तो उस धर्मव्याध ने पूछा, उसने कौशिक ने पूछा कि भाई मुझे भी कोई ऐसी सिद्धि बताओगी जो तुमको हुआ, कि देखो मिथिला नगरी में जाओ, एक व्याध है शिकारी, उसके पास जाओ। तो धर्मव्याध के पास गया, कसाई खाने में रहता था। जाते कहा अच्छा 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 आपको उस माई ने भेजा ना? अच्छा हाँ, आपके वो चिड़िया पड़ गई थी ना? अरे तू मांस का व्यापार करने वाला? हाँ ऐसा ही है। ऐसी उनकी बातें हो रही थी, तो वो मनी मन में कौशिक जी कह रहे अब ऐसा पाप नहीं करूंगा। धर्मव्याध के साथ उनकी कई बातें हुई, अब आगे और बातें हो रही है। धर्मव्याध का उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, मुझ शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो सकता है? शिष्ट पुरुष अच्छे पुरुष है, उनके आचार विचार का ज्ञान कैसे हो सकता है? तुम ही मुझे शिष्टों का व्यवहार बताओ। व्याद बोला कि हे ब्राह्मण, यज्ञ तप दान वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये पांच बातें शिष्ट व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम क्रोध लोभ दंभ और उद्दंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना ये श्रेष्ठ पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुष में गुरु सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये दो चार चीजें रहती हैं। सारे वेदों का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। ये त्याग शिष्ट पुरुष में सदा ही रहता है। जो शिष्ट हैं वे सदा नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, गुरुजनों की आज्ञा से चलते हैं। कौशिक, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ देना, सदा अच्छे पुरुषों की सेवा में रहना है। ये शरीर एक नदी है, पांच इंद्रियां इसमें जल है, काम क्रोध रूपी इसमें मगर है। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और दुर्गम स्थान माने जन्म आदि के क्लेश को पार हो जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छा बैठता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीव का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा सत्य में है। सत्य के आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। सत्य गौरव की वस्तु है। न्याययुक्त कर्मों का आरंभ ही धर्म कहा जाता है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे अधर्म कहा जाता है। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो मन पर काबू रखने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, उन्हें शिष्टाचारी मानना चाहिए। उनकी सत्वगुण की उनमें सत्वगुण की वृद्धि रहती है। जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है, उनके हाथ से कभी हिंसा कभी घोर कर्म हो नहीं सकता है। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं, दूसरा वह है जिसका संपूर्ण धर्मशास्त्रों में वर्णन हुआ है, तीसरा वह है कि शिष्ट पुरुषों का आचरण है। इस प्रकार ये धर्म के तीन लक्षण हैं: विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना, क्षमा सत्य कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का चित्त नहीं दुखाते, कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत और शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय है, सद्गुणी है, संपूर्ण जगत के हितेशी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट है। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर कृपा रखते हैं। स्त्री और सेवकों को कष्ट न हो, इसके लिए वे सदा सावधान रहते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस बात पर सदा दृष्टि रखते हैं। अहिंसा सत्य क्रूरता का अभाव, कोमलता द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा क्षमा समदम इत्यादि शिष्ट पुरुषों के गुण होते हैं। इनमें प्रधानता तीन की है। सबसे बड़ी बात, किसी से भी द्रोह न करे। दूसरा, दान करता रहे। तीसरा, सत्य बोले। शांति संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य भय से मुक्त रहते हैं। धर्म व्याद ने कौशिक से कहा कि बूढ़े पुरुषों का ये कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। ये बात बिल्कुल ठीक है। धर्म की गति बड़ी गहन है, उसके अनेकों भेद और शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बचते हो तो ऐसे अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। यहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का हित होता हो उसी का नाम सत्य है, चाहे वो ऊपर से असत्य ही दिखता हो। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हो, वो देखने में सत्य होने पर भी असत्य है, अधर्म है। ये धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है कौशिक। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु वो ये ध्यान नहीं देता कि मेरे कर्मों का फल है। लोग कहते हैं देखो मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं, मेरे सामने कैसे दुख आ गया, भगवान ने कैसे दुख भेज दिया, अनावश्यक अकल लगाते हैं। ऐसे आदमी मूर्ख होते हैं, कपटी होते हैं, चंचल चित्त वाले होते हैं, सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनकी बुद्धि, शिक्षा, पुरुषार्थ सब जगह निष्फल होती है। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता बहुत अच्छी बात, यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसे वो प्राप्त कर लेता, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। बड़े बड़े आदमी, संयमी, कार्यकुशल, बुद्धिमान, वो भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन इच्छानुसार फल नहीं मिलता। फल तो पुरुषार्थ का अधीन है, पुरुषार्थ का फल अधीन है। दूसरा, मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है, सदा लोगों को ठगता रहता है, मौत से जिंदगी बिता रहा है, क्या कारण है कि अभी उसका ये प्रारब्ध है। बिना कोई उद्योग के अपार संपत्ति का स्वामी हो गया, किसी को दिन भर काम करने पर भी मजदूरी भी नहीं मिलती, इतने इतने बिचारे दीनहीन मनुष्य अपने पेट में अन्न भी नहीं लेते और सदाचार का पालन करते हैं, तो लोग ऐसे समय में चक्कर खा जाते हैं कि देखो बेचारा कितना सीधा, कितना सरल, धर्म से कमाई करता है, लेकिन पेट भर अन्न नहीं मिलता। और वो देखो कितना पापी, कितना दुष्ट, लेकिन देखो वो मौज कर रहा है। ये क्या धर्म है, क्या अधर्म है, जानते नहीं। यह उनके भाग्य का फल है। बहुत से लोग दीन पुरुष पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, और उनके बाद वो बालक पैदा होते हैं तो कुल में कलंक लगाने वाले होते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य के साथ, प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार में इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देते रहते हैं। भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगी का उसी प्रकार रोग का निवारण कर देते हैं जैसे बधिक मृगों को भगा देते हैं। वैद्य ने क्या ठीक किया, वो तो उसका भाग्य ही था। जय जी को दिया है। उसका रोग जाने का समय आ गया। विप्रवर यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है वे प्राय संग्रहिणी से कष्ट पाते रहते हैं, खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, स्वस्थ है, खूब खा सकते हैं, लेकिन वे त्राही त्राही करते रहते हैं, उनको खाने को मिलता नहीं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जाता है। इस प्रकार ये संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आदि व्याधि रूप प्रचंड तरंगों के थपेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता, क्या बात है, यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो न तो कोई मरता, न बूढ़ा होता, न कोई बीमार होता, न किसी के पास अर्थाभाव होता, सब मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते तो अप्रिय तो प्राप्त हो ही नहीं, होता ही नहीं किसी को। पर देखा क्या जा रहा है कि जगत में सब लोग सभी से ऊंचा होना चाहते हैं पर ऊंचा होते नहीं, बहुत भोग पदार्थ चाहते हैं मिलते नहीं, बहुत मान बढ़ाई आदर सत्कार चाहते हैं नहीं मिलता, सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं नहीं रह पाते। कहां तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी सदा अधिकार नहीं रहेगा। श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है। सनातन का और नाशवान का मेल बैठता ही नहीं है। शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है पर अविनाशी जीव नहीं मरता, वह कर्म बंधन में बंधा हुआ दूसरे शरीरों में चला जाता है। कौशिक ब्राह्मण ने पूछा, हे कर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्म व्यात, तुम्हारी बातों से बड़ा आश्चर्य होता है, मांस का व्यापार करते हो और जीव की नित्यता को गहराई से तुम समझते हो, बड़ा आश्चर्य है। ये जीव सनातन कैसे है इस विषय को ठीक ठीक समझना चाहता हूं। व्याध ने कहा, हे विप्रवर, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांचों भूतों में मिल जाना ही उसका नाश है। इसमें पांच तत्व है, जलाते हैं तब क्या होता है, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया, और हाड़ के राख ये पृथ्वी में मिल गए, जल जल में मिल गया, खत्म। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांचों भूतों में मिल जाना ही इसका नाश है। इस जगत में मनुष्य के किए हुए कर्मों को दूसरा कोई नहीं भोग सकता, उसने जो कुछ कर्म किया है वो उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये अटल सिद्धांत है, किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पवित्र आत्मा मनुष्य पुण्यात्म पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं, नीच पुरुष पापों का आचरण करते हैं। वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर दूसरा जन्म लेता है। कौशिक बोलता है कि जीव तो सब जगह व्यापक बताते हैं, फिर ये दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है। जीव सबसे अलग है, असंग है, फिर भी पाप पुण्य के साथ कैसे मिलता है, फिर उसको पुण्यमयी और पापमयी योनियां किस तरह प्राप्त होती हैं। धर्मव्याध ने कहा कि जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्म के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्म के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है उसका वर्णन सुनाता हूं। शुभ कर्म ही शुभ कर्म होता है और उसका जब जीव के साथ संबंध होता है तो देव योनि मिलती है। शुभ और अशुभ दोनों का मेल होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है, और केवल अशुभ ही अशुभ होते हैं तो पशु पक्षी आदि अधम योनियों में जाता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है। वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुखों से सदा पीड़ित होता रहता है, अपने ही पापों के कारणों से बार बार संसार में क्लेश भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के पश्चात पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए जीव नीच जाति में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत प्रकार के पाप कर बैठता है जिनके कारण कुपत्य खा लेने वाले रोगी की तरह नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। इस प्रकार यद्यपि वह निरंतर दुख उठाता रहता है तथापि अपने को दुखी नहीं मानता, दुख को ही सुख समझता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता तब तक उसके नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेकों कष्टों को सहन करता रहता है और वो चक्र की तरह संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों के भोग पूर्ण क्षीण हो जाते हैं और सत्कर्मों के द्वारा उसमें शुद्धि आ जाती है तब तप और योग का प्रारंभ होता है और फिर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, वहां उसको शोक नहीं करना पड़ता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत होती है फिर उसके पाप का अंत नहीं है, इसलिए पुण्य करने के लिए प्रयत्न करो। यदि आप पाप को करने लग जाओगे तो फिर आपकी वृत्ति पाप में सन जाएगी, फिर पाप ही पाप पैदा होगा। जो संस्कार संपन्न जितेंद्रिय पवित्र आदमी मन पर काबू रख लेता है वह बुद्धिमान पुरुष दोनों ही प्रकार के लोकों के सुख का आनंद लेता है। इसलिए प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वे सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्टों जैसा व्यवहार करे, किसी को कष्ट न पहुंचाए, सबको आराम देवे, अपने धर्म के अनुसार कर्म करे जिसमें कर्म का संकर न हो। कर्म का संकर माने कर्म में मिलावट। बुद्धिमान पुरुष धर्म से आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय ग्रहण करो। धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा धर्म का मूल सींचना है। इस प्रकार धर्मात्मा होता है उसका चित्त स्वच्छ और प्रसन्न होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी प्रकार के विषय सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्म का फल माना गया है। धर्म के फल रूप से सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता वह ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है। बुद्धि के नेत्रों से देखने वाला मनुष्य राग द्वेष दोषों से युक्त नहीं होता, वह विरक्त होता है, धर्म का त्याग नहीं करता है। संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है, तत्पश्चात प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है। देखो, मुक्ति को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य को करते जाओ, भगवान के भरोसे छोड़ो, ये तो आता है। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त कर लेने के बाद फिर मनुष्य धार्मिक हो जाता है। जीव का कल्याण साधन है तप, तप का मूल है सम और दम, और फिर मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसके लिए संसार के सब वस्तुएं खुली हो जाती हैं। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और समदम के द्वारा मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ने प्रश्न किया, ये इंद्रियां कौन कौन है, इनका निग्रह किस प्रकार करें, निग्रह का फल क्या है और उस फल की प्राप्ति कैसे होती है। धर्मव्याध बोला, इंद्रियों द्वारा किसी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है, पर इतना जान लेना चाहिए कि इंद्रियों से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसका ज्ञान हम लोग एक इंद्रिय से नहीं कर सकते। नेत्र तो कहता है कि ये लाल है बस, और जीभ कहेगा कि इसका स्वाद कैसे है, नाक कहेगा कि इसमें सुगंध है कि नहीं है, सुगंध है कि दुर्गंध है, ये बात नाक कहेगा, आंख नहीं बताएगी। ये शब्द है ये कान सुनता है, दूसरा कोई नहीं सुनता। तो एक इंद्रिय से पूरा ज्ञान नहीं होता है, और पांचों इंद्रियां मिलकर के जब मन के साथ जुड़ती हैं तब इस वस्तु का ज्ञान होता है कि वस्तु है, ये काम आने वाली है। बस मनुष्य जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ज्ञान करता है उसके प्रति उसका राग और द्वेष हो जाता है। जब राग होता है तो उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है, और प्राप्त होने पर अभीष्ट विषयों का बार बार सेवन करता है, और फिर उसका राग बढ़ता चला जाता है, और ज्यों ज्यों राग बढ़ता है त्यों त्यों उसके निमित्त दूसरों के साथ द्वेष करता रहता है, फिर लोभ बढ़ जाता है। लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में लग ही नहीं सकती, यदि वो धर्म करता भी है तो कोरा बहाना है, उसकी ओट में स्वार्थ छिपा रहता है। ब्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य, रुपया ब्याज में लगाया और ब्याज मिले और भी समय धर्म करा, ब्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य वास्तव में तो अर्थ चाहता है, और धर्म के ब्याज से जब अर्थ की सिद्धि होने लगती है तब उसी में ही रम जाता है, फिर उस धन से उसके हृदय में पाप करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए सेठ जी कहते थे कि पैसे को ज्यादा ब्याज पर मत लगाओ, पैसा ज्यादा हो गया तो व्यापार में ही लगाओ, हृदय में राग द्वेष नहीं होगा। पैसे को यदि उधार दे दोगे तो समय पर नहीं आएगा तो राग द्वेष बढ़ेगा, लड़ाई होगी, खटपट हो जाएगी, आपका मन अशांत, उसका मन अशांत। व्यापार के अंदर पैसा लगाओ, घाटा मुनाफा भी होगा तो वो मन में राग द्वेष नहीं करेगा। जब उसके मित्र और विद्वान पुरुष उसे उस कर्म से रोकते हैं तो उसके समर्थन में वे अशास्त्री उत्तर देते हुए उसे वेद प्रतिपादित बतलाते हैं, ब्याज से जो धर्म करते हैं उनके लिए। राग रूपी दोष के रहने के कारण तीन प्रकार के अधर्म होते हैं, एक तो मन से पाप का चिंतन, एक वाणी से पाप का उच्चारण, और तीसरा कर्म के द्वारा पाप का आचरण। अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं, अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी बहुत अच्छी गाढ़ मित्रता होती है। पापी पापी आपस में मिलकर सिवाय पाप के और कोई नई बात नहीं करते, इस पाप से वे इस लोक में परलोक में सदा ही दुर्गति को भोगते हैं। धर्म की प्राप्ति कैसे होती बताऊं, किसमें सुख है और किसमें दुख है इसके विवेचन में जो कुशल है अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उसके विषय में गहराई से विचार करना चाहिए, कि जिसमें दुख है दोष है उनको पहले से ही समझ ले और अलग हो जाए। संतों के संग से धर्म का ज्ञान होता है और उन्हें धर्म का महत्व जान लेने पर धर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। पांच भूतों से बना हुआ चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अलग कोई नहीं है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत हैं। आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है, ये गुण है। पांचों भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना, इसी को मन कहते हैं। सातवां तत्व बुद्धि है और आठवां तत्व अहंकार है। इसके सिवाय पांच ज्ञानेन्द्रियां, जीवात्मा, सत्व रजतम सब मिलकर सत्रह तत्वों का समूह अव्यक्त माने मूल प्रकृति का स्वरूप कहलाता है। पांच ज्ञानेन्द्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है उनको सम्मिलित करने से 24 तत्व हो जाते हैं। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का भोग रूप है। पृथ्वी के पांच गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। गंध को छोड़कर शेष चार गुण जल में है, ये पंचीकरण है। वो पंचीकरण माने पृथ्वी के अंदर है आठाना और इसमें दो आना है जल, दो आना है अग्नि, दो आना है वायु, दो आना है आकाश, तो एक रुपया हो गया। तो जो पृथ्वी है उसमें आधा हिस्सा तो पृथ्वी का है दो और एक एक हिस्सा उनका है। आकाश के अंदर आठाना तो आकाश है, अभी जो आकाश दिखता है इसमें पृथ्वी भी है। केवल आकाश दिखाई नहीं दे सकता अपने को, क्योंकि अपनी इंद्रियां जो बनी हुई है पांच भूतों से बनी हुई है तो सूक्ष्म तत्व तक जा ही नहीं सकते। तो पृथ्वी के अंदर जो पांच गुण है, फिर गंध को छोड़कर चार गुण जल के हैं, फिर तीन गुण वायु के हैं और फिर जो है आकाश में एक गुण रहता है। वायु के दो गुण, तेज के तीन गुण, जल के चार गुण, पृथ्वी के पांच गुण। ये पांच भूत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ये एक ही भाव वे ही अपने को प्रकाशित हो रहे हैं। आई गया है जो हम आकाश देखते हैं, जो हम अग्नि देखते हैं उसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, सब है। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं उस समय काल के अधीन होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और पूर्व देह को भूल जाते हैं, इसी का नाम मृत्यु है और कुछ नहीं। जैसे गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति शरीर को भूल जाता है, मूर्छा वाला भूल जाता है, बेहोश वाला भूल जाता है, ऐसे ही मृत्यु अवस्था में उसको भूल जाता है। देह के प्रत्येक अंग में जो रक्त आदि धातु दिखाई देती है ये पांचों भूतों के ही परिणाम है। इनसे सारा चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिसका संसर्ग होता है वो व्यक्त है, किंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है केवल अनुमान से ही जाना जाता है उसे अव्यक्त कहते हैं। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है यही उसकी तपस्या है। इंद्रिय निग्रह द्वारा मानो आत्म तत्व को साक्षात्कार करना है, यह उसकी तपस्या है। आत्मदृष्टि हो जाने पर संपूर्ण लोकों को अपने में और अपने को संपूर्ण लोकों में देखता है। उसके अंदर मैं और मेरा, तू और तेरे का भेद मिट जाता है। ज्ञान दृष्टि की बात है। ऐसा परात्पर परब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तभी तक वो संपूर्ण भूतों को देखता है। वह मायामय क्लेशों को लांग लेता है। योगी को लोकवृत्ति के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान ब्रह्मा ने वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू और निर्विकार बताया है। मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है और यही तपस्या का मूल है। इंद्रियों के अधीन इंद्रियों को ध्यान से इंद्रियों को अधीन न रखना यही नरक का मार्ग है। इंद्रियों का साथ देते रहने से अनेक प्रकार के दोष घटित होते हैं और उन्हीं के वश में होकर के मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। अपने शरीर में विद्यमान मन सहित छह इंद्रियों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पाप में कभी नहीं लगता, फिर अनर्थों से तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुष का ये शरीर रथ है, आत्मा सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार सावधान पुरुष अपनी इंद्रियों को अधीन रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है। देह रूपी रथ में जुटे हुए मन और इंद्रिय रूपी छह बलवान घोड़ों की बागडोर को ठीक से संभालता है वही सारथी है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्य पूर्वक प्रयत्न करें। धीरता पूर्वक उद्योग करने वाले को विजय प्राप्त होती है। विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को भी लगा दिया जाएगा तो वह बुद्धि को उसी प्रकार हर लेता है जैसे नदी के मझधार में चलती हुई नाव को वायु का झोंका डुबा देता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविदेयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर नाव युमांबसी। इसलिए इन इंद्रियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़े धोखेबाज इंद्रियां हैं। मूर्ख लोग संसार में सब पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन अपने मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। जो इनके दोषों का अनुसंधान करने वाला पुरुष है वह वीतराग पुरुष है और इंद्रियों को अपने अधीन करके वह आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न रहता है। फिर उन्होंने तीनों गुणों की बात बताई और बताया मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे, उससे मन पवित्र होता है। रात को पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगाए। सायंकाल का समय, प्रातःकाल सायंकाल, इस प्रकार जो आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है वह प्रज्वलित दीपक के भांति अपने मन रूपी दीपक से निराकार आत्मा का दर्शन करके मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए सेठ जी भी यही कहे, सुबह और सायंकाल निराकार का ध्यान करो। ये बहुत बड़ा तप है, भवसागर से पार कराने वाला सेतु है। तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से हरदम बचाए रखना चाहिए। दया सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है। जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया। जिसके कर्म वासनाओं से बंधे हुए नहीं है, जिसने अपना सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया, वह बहुत बड़ा बुद्धिमान है, सबसे मित्रता करो। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से बैर मत करो, कोई वस्तुओं के संग्रह में मत लगो, हर स्थिति में संतुष्ट रहो, कामना और लोलुपता का त्याग कर दो, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है, यही आत्मज्ञान का साधन है। इस प्रकार के संग्रह का त्याग कर परलोक और इस लोक के भोगों से दृढ़ वैराग्य धारण करके मन और इंद्रियों का संयम करने वाला व्यक्ति कहीं मुक्ति में अटकता नहीं है। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन पर अधिकार है, जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। यही नित्य सिद्ध स्वरूप है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जब धर्म व्याध ने मोक्ष साधनों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्यायुक्त है, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्म व्याध ने कहा, ब्राह्मण देव अब आप मेरे घर पर चलकर धर्म को साक्षात आंखों से देख लो, जिसकी बदौलत मैं आज आपको भी धर्म की बात सुना रहा हूं। मेरे घर पर पधारिए और मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। कौशिक ब्राह्मण व्याध के साथ साथ व्याध के घर में चले गए। बड़ा साफ सुथरा घर, चार कमरे, चूने की सफेदी, घर में कोई किसी प्रकार का वैभव नहीं, बड़ा घर शोभायमान, जैसे कोई देवताओं का निवास स्थान हो। वहां सुंदर भगवान की प्रतिमा, सोने के लिए बिछोना अलग, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन अलग, वह धूप और केसर आदि की मीठी मीठी सुगंध फैल रही है। ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याद के पिता माता भोजन वगैरह करके प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभायमान है और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा हुई हुई है। धर्मव्याध ने माता पिता को देखते ही उनके चरणों में सिर रख दिया, पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करेगा। हम दोनों तेरी सेवा से, तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हैं। बेटा तुम्हारी आयु बड़ी हो, तूने उत्तम गति, उत्तम तप, उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बेटा तू सत्पुत्र है, तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार, हमारा पूजन किया है, तू हमको देवता समझता है, द्विजों के समान शमदम का पालन किया है। मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह तथा हम दोनों तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं। मन वाणी और शरीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धि में हमारी सेवा के सिवाय कोई दूसरा विचार है ही नहीं। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उसी प्रकार नहीं उससे भी बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय कराया। उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित कुशल से तो है ना? आपका शरीर तो निरोग है ना? उन्होंने कहा हाँ भगवान, हमारे घर में सेवक सब सकुशल हैं, आप अपना कहें। आप यहां सकुशल पहुंच गए ना, कोई रास्ते में कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा ना 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 ना, कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर व्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा भगवान, ये मेरे बूढ़े मां बाप मेरे प्रधान देवता है, सृष्टि में इनसे बढ़कर मैं किसी को भी नहीं मानता हूं। जो कुछ किसी देवता के लिए करना चाहिए उनसे बढ़कर मैं इनको मानकर सर्वस्व इनके लिए करता हूं। इनकी सेवा में मैं कभी आलस्य नहीं करता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे लिए ये मेरे बूढ़े मां बाप पूजनीय है। जिस लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, मैं भी इनके लिए उपहार अर्पित करता हूं। ये मेरे माता पिता सर्वश्रेष्ठ देवता है, मैं इन्हें फल फूल और रत्नों से संतुष्ट करता हूं। जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, मेरे लिए ये ही है। चारों वेद भी यही है, यज्ञ भी यही है। इन्हीं के लिए मेरे पुत्र स्त्री और मित्र है, ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में अर्पित है। स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इनकी सेवा करता हूं। मैं स्वयं इन्हें नहलाता हूं, स्वयं इनके शरीर का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वृद्ध होने से चमड़ी बहुत कोमल हो गई, धीरे धीरे इनके शरीर पर हाथ मलता हूं जो इनको सुहाता रहता है। फिर मेरी पत्नी भोजन बनाती है, उस भोजन को एक पवित्र थाली में लाकर इनके सामने परोस कर जिमाता हूं। मुझे ये मालूम रहता है कि इनकी क्या रुचि है और कौन सी रुचि नहीं है, इसलिए इनके पसंद की चीजें लाकर इनको भोजन कराता हूं। जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वो हम लाते ही नहीं है। आलस्य का त्याग कर मैं इनकी सेवा करता हूं। इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा हे ब्राह्मण, माता पिता की सेवा मेरी तपस्या है, इस तप का बल देखिए, इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं जान गया कि आपको उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहां आना हुआ, और मैं यह भी जान गया कि आप उस चिड़िया को क्रोध से मार दिए थे। जिस सती ने आपको यहां भेजा है वो पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में सभी बातें जानती हैं। अब मैं आपके हित के लिए कुछ निवेदन करता हूं, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही घर त्याग कर दिया, इसीलिए आपको बार बार तिरस्कार का सामना करना पड़ा। ये आपके लिए अनुचित कार्य है। आपके शोक से दोनों बूढ़े माता पिता रोते रोते अंधे हो गए हैं, शायद आपको पता नहीं है, मुझे पता है। उन्हें जाकर प्रसन्न कीजिए। माता पिता की प्रसन्नता लिए बिना कोई आदमी धर्म निभाए वो धर्म नष्ट हो जाता है। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं, किंतु माता पिता की सेवा के बिना ये आपका धर्म टिक ही नहीं सकता, सब व्यर्थ है। जल्दी जाइए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं जानता हूं कि अपने मां बाप की सेवा करूं। ब्राह्मण बोला हे धर्मात्मन, मेरा कैसा बड़ा सौभाग्य है, मैं यहां आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त किया। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग संसार में बड़े दुर्लभ हैं। हजारों में कोई बिरले ही होते हैं जो धर्म का तत्व जानता है, पर वो जानने वाला मिलता नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूं। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके दोहित्रों ने बचाया, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार कर दिया। अब ये तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं है वे धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकते। आश्चर्य है ये सनातन धर्म जिसका तत्व समझना कठिन है शूद्र जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है। हे धर्मव्याध, मैं आपको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण से शूद्र योनि में जन्म हो गया, परंतु कोई बात नहीं। ब्राह्मण के पूछने पर उस धर्मव्याध ने बताया, हे विप्रवर, मैं अपने पूर्व जन्म की भी बात बताता हूं। मैं पूर्व जन्म में वेदवेत्ता ब्राह्मण था, मेरा बहुत आदर था, दूर दूर से लोग मेरे से वेदों की बात सुनने के लिए आते थे। पर कोई संग दोष हो गया, मेरे द्वारा कुछ ऐसा ही कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप मिल गया, और उस शाप के कारण से मैंने शूद्र योनि में जन्म लिया, और वो भी व्याध के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मव्याध, शूद्र शरीर में शूद्र के घर में शरीर है, पर तुम्हारे ज्ञान में तो कोई शूद्रता आ ही नहीं सकती। ज्ञान न कभी ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जो ब्राह्मण होकर के भी पापी, दंभी और असन्न मार्ग पर चलने वाले हैं, वे शूद्र से भी नीचे हैं। और जो शूद्र होकर भी सम, दम, सत्य और धर्म का तत्व का रहस्य जानते हैं, मैं उनको ब्राह्मण मानता हूं। क्योंकि मनुष्य सदाचार से ब्राह्मण होता है। ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, धर्म के तत्व को जानने वाले हो, ज्ञान के आनंद में मस्त रहते हो, सदा कृतार्थ हो, क्या तुम्हारी विशेषता है? अब मैं जाने की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर, अच्छा महाराज, अब आप पधारो। ब्राह्मण ने धर्म व्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिया। घर जाकर उसने माता पिता की सेवा की। बूढ़े मां बाप वास्तव में शोक से अंधे हो गए थे, खूब सेवा की, मीठे वचनों से उन्हें संतुष्ट किया, गलती के लिए क्षमा याचना की, और फिर वे बड़ी सराहना करने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, हमने तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। युधिष्ठिर, तुमने पूछा था ना कि पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाओ, तो वह हमने तुमको सुना दिया। कहने लगे, महाराज कितना सुंदर आपने आख्यान सुनाया। संसार के प्रत्येक मनुष्य को इन आख्यान के आधार पर चलना चाहिए। आपके मुंह से तो धर्म की बातें सुनते सुनते